मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 जुलाई 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथी का नाम है शशि भूषण सिंह, जो भोजपुर बिहार से हैं। तो शशि भूषण, मैं आपका एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं राकेश मीना जी को, जिन्होंने ईमेल के जरिए सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो एसआई एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लिया है और इसके लिए उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस को धन्यवाद दिया है। तो राकेश, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई और आपके इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं। सूचना ये होती है कि ये खासकर नए लिसनर्स के लिए है कि शनिवार और रविवार यानी कि आने वाले दो दिनों तक डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, लेकिन शनिवार को जो प्रेस क्लिपिंग्स होती हैं वो आप लोगों को एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी, प्लस कुछ और भी चीजें मिलती हैं जिसमें शामिल होते हैं 4 आर्टिकल्स, जिसमें योजना और के हिंदी और इंग्लिश एडिशन के 1-1 आर्टिकल्स होते हैं और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश के 1-1 आर्टिकल होते हैं। साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है, एक साप्ताहिक प्रश्न जो खासकर सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर तैयार किया गया होता है और उसका मकसद यह होता है कि आप उस प्रश्न का अभ्यास करें, अपनी तरफ से लिखें, देखें कितना लिख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, उसको रिवाइज करें, उस पर थोड़ा सा काम करें, मेहनत करें, क्योंकि फ्रेंड्स सिविल सर्विस के मेंस को क्वालिफाई करने के लिए मैं समझता हूं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस काफी अहमियत रखती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो फर्स्ट बैच टू फोर्थ बैच, जो चारों बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। इस बार मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट बैच से लेकर के चौथे बैच तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही टॉपिक पर स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जा रहा है और वह टॉपिक है साउथ चीन समुद्र। आप देख रहे हैं कि ये काफी हॉट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है, थोड़ा सा कह लीजिए कि टेक्निकल जैसा भी है। अखबारों में हालांकि आप लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत से एडिटोरियल कमेंट्स भी आए हैं और हम लोग इस पर थोड़ी बहुत बातचीत भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर इसके बेसिक्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए तो शायद इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन सकती है। और इस पर पकड़ बनानी आपके लिए इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो अभी तनाव की स्थिति अभी आई है। साउथ चाइना सी का जो मामला है ये पहले से भी चल रहा है, आप देखेंगे कि 2014 में तो इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और अब चूंकि चाइना ने सीधे सीधे ट्रिब्यूनल के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है तो डेफिनेटली अब यह मामला जो है, अभी तक तो वो एक क्षेत्रीय मामला जैसा था, नो डाउट उसमें अमेरिका जैसे देशों का इंटरेस्ट हो गया था उस शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर, लेकिन अब तो मामला और भी ज्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेगा। गर्मजोशी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मतलब और हॉट प्रॉब्लम ये होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि कल मैंने इशारे इशारे में आपसे बात की थी, खासकर जब मैं सुकरात के कुछ वक्तव्यों के बारे में चर्चा करने जा रहा था और स्पेशली उनके अंतरात्मा की आवाज को लेकर, जिसे कॉन्सस हम कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्सस ही कहा जाता है, वॉयस ऑफ कॉन्सस। उसमें मैंने फिल्म सुल्तान के बारे में बात करते हुए आपसे कहा था कि मैं आगे अब कुछ दिनों तक अगर संभव हो सका तो सुल्तान फिल्म को आधार बनाकर आप लोगों से जिंदगी के संदर्भ में कुछ बातें करूंगा। तो दोस्तों, मैं उसी की आज शुरुआत कर रहा हूं और इस यकीन के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि आप सब जो मेरे इस डेली ऑडियो को सुन रहे हैं, फिर चाहे आप इसके लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को ही क्यों न सुन रहे हो, केवल आपने सुल्तान फिल्म देख ली होगी। और वैसे भी इस फिल्म ने जो सारे पिछले रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपने डेफिनेटली यह फिल्म देखी ही होगी। इसके डायलॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से सुना ही होगा। बीच बीच में ऐसे प्रसंग भी शायद आपको बड़े करुणापूर्ण लगे हों कि आपकी आंखों से अगर आंसू की बूंदें न भी टपकी हों तो शायद डबडबा आई हो, या कम से कम नम तो हो ही गई होंगी। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जो अनुभव आप लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे, शायद तभी यह फिल्म इतनी सुपरहिट हुई है। मित्रों, मैंने भी ये फिल्म देखी। देखनी इसलिए जरूरी पड़ी कि लगा कि जब यार ये इतनी सुपरहिट हो रही है और सब देखने जा रहे हैं तो मैं ही अपवाद क्यों रहूं, फिर हम लोग भी गए और फिल्म देखकर आए। तो दोस्तों, मैं कल के ही जो मेरा जो टॉपिक रहा है उसको मैं सुल्तान फिल्म के जरिए जोड़कर आगे बढ़ाना चाहूंगा। इसमें एक पार्श्व संगीत है, पार्श्व गीत है कह लीजिए, एक है ना बैकग्राउंड सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना है वो कई कई बार वो गीत बजता रहता है। उसकी जो शुरू की लाइन है वो आप लोगों के जेहन में शायद मौजूद हो, वो लाइन है, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। बस केवल ये इन्हीं लाइन को लेकर के मैं आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आप में से कौन है आप बताइए जो ये नहीं जानता है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अगर किसी चीज में आपको सफल होना है तो उसमें आपको लग जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, हार नहीं माननी चाहिए, जैसा कि सुल्तान कहता है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप हार मान नहीं लेते, अदरवाइज तो आप लगातार जीतने की यात्रा की तरफ बढ़ते ही रहते हैं। कहने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, कहने की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए उसकी अपील भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मित्रों बात तो सब एक ही कहते हैं और आप जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब हम सब जानते ही हैं तो सर इस बात को क्यों उठा रहे हैं, तो क्या आप जनाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? मैं मित्रों कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, कुछ नहीं समझाना चाह रहा हूं, सच पूछे तो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, मैं आपको अपने मन दिल और दिमाग की बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और मैं जो पहुंचाना चाह रहा हूं वो कहीं ना कहीं इस पार्श्व गीत से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ऊपर अल्लाह है वो सबके लिए है, उसे अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, आप ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जो भी कहना हो आप कह लीजिए, वो ऊपर है नहीं है हम नहीं जानते, मानते जरूर हैं कि वो है, और ये मानना अच्छा मानना है, कोई बुरी चीज को हम नहीं मान रहे हैं जो हमारा नुकसान पहुंचाएगी या जो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी, हम एक अच्छे चीज को ही मान रहे हैं, तो वो है। हम सभी के पैर धरती पर ही हैं, हम सब जमीन के ऊपर खड़े हैं, यानी हमारे नीचे जमीन भी है, ये सबके साथ है और बराबर रूप में है, वहां कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो बीच में है, जिन्होंने कहा बीच में तेरा जुनून, मित्रों ये सबके साथ बराबर नहीं है, और इसका अनुपात ही हमारी जिंदगी के सारे दृश्य में परिवर्तन कर देता है, हमारी सारी उपलब्धियों में, हमारे सारी खुशी में, हमारे सारे आनंद में, हमारे जीवन की प्रणाली में, हमारी गतिविधियों में, हर चीज में जो परिवर्तन लाता है वह है बीच में तेरा जुनून, अदरवाइज तो सारी चीजें, शेष दो चीजें समान है ही। दोस्तों, यहां जुनून शब्द पर आप थोड़ा सा जाइए, हम सब की इच्छाएं होती हैं और बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, हम जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं वहां अपनी एक इच्छा लेकर जाते हैं, और वो जो इच्छा होती है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसको बेहतर करने की इच्छा होती है, जैसे मान लीजिए कि एक गांव का मजदूर है, तो उसकी यही इच्छा होगी कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, और भले ही उसको सरकारी के सबसे नीचे की श्रेणी की नौकरी मिले, लेकिन उसके अगर आप आनंद और उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे तो वही होगा जैसे कि आपको आईएएस की नौकरी मिल जाए, उससे कम नहीं होगा, है ना। तो ये जो इच्छा है, ये सबकी क्या पाने की इच्छा है, वो मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात है कि उसकी वह इच्छा है और वह इच्छा उसके लिए जीवन का पर्याय है, वो उसके लिए बहुत बड़े सुख आनंद और उपलब्धि का आधार है। दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि इच्छा और जुनून, जुनून क्या है, क्या इच्छा जुनून है। आप सब कह देंगे कि नहीं सर, इच्छा तो जुनून नहीं है। जुनून का मतलब है एक किस्म का पागलपन। ये पागलपन, ये पगलापन भी नहीं है, ये पागलपन है, जिसे हमारे शास्त्रों में एक बर्निंग डिजायर कहा गया है, प्रज्वलित इच्छा, जिसके बारे में मैं बार बार अपने नौजवान साथियों को बताता हूं कि बर्निंग डिजायर, वह इच्छा जो कभी धीमी नहीं पड़ती, वह इच्छा जो मुरझाती नहीं है, जो बुझती नहीं है, लगातार केवल जलती ही नहीं रहती बल्कि ज्यादा से ज्यादा भभकती चली जाती है, वह इच्छा जो आपको चैन से बैठने नहीं देती, वह इच्छा जो आपको सोने नहीं देती, वो है जुनून। तो मित्रों, आप पूरे के पूरे सुल्तान की उपलब्धियों को जांचने की कोशिश कीजिए तो आप देखिए कि कैसे वह अपनी इच्छा को जुनून में बदलता है। याद रखिए कि ये जुनून अपने आप नहीं आ जाता, ये आपको लाना पड़ता है। जैसे लता को चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। आप आजकल गांव वगैरह में चले जाइए, देखिए बेल वाली वेजिटेबल्स खूब लग रही हैं। कोई लौकी की बेल लगाए हुए है, कोई गिलकी की लगाए हुए है, कोई करेले की लगाए हुए, खूब सारी बेल लगा रखी हैं। लेकिन जैसे ही वो बेल मुश्किल से 3-4 फीट की होती है कि सहारे की मांग करने लगती है, और फिर आप झाड़ियों के द्वारा, डंडियों के द्वारा, रस्सियों के द्वारा उसे ऊपर छप्पर तक पहुंचे, छत तक पहुंचाते हैं, खपड़ा तक पहुंचाते हैं ताकि वहां जाकर के वो बैल फैल सके। तो दोस्तों, इच्छाएं अगर हमारी हैं तो उसकी यात्रा कितनी लंबी होगी, 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फीट। अगर उससे फिर और ऊपर तक जाना है तो फिर आपको उसे सपोर्ट देना पड़ता है, झाड़ियों का सपोर्ट देना पड़ता है। ये झाड़ियों का सपोर्ट क्या है इच्छा के संदर्भ में दोस्तों? ये है इमोशन। आप जब तक अपनी इच्छा के साथ इमोशन को नहीं जोड़ेंगे, जिसे मैं इमोशनल एनर्जी कहता हूं, फ्रेंड्स, जो धरती है ये आपकी फिजिकल एनर्जी है, जो अल्लाह है आसमान पर वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, और याद रखिए जो आपका जुनून है इसमें दोनों एनर्जी शामिल हैं, मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी। जब तक आप अपने इस मेंटल एनर्जी को, जो इच्छा है कह लीजिए, इमोशनल एनर्जी का सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक वो जुनून में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तलाशने की कोशिश कीजिए मित्रों कि सुल्तान ने कैसे अपनी इच्छा को उस इमोशनल एनर्जी का सपोर्ट दिया। वो तो गांव में अच्छे से रह रहा था, कुछ नहीं, अपना टीवी वो चलाता रहता था, केबल टीवी, और मस्त था, अपना पतंगे लूटता रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की दिख जाती है और उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे इससे शादी करनी है, और इस उससे शादी करनी है। वह उसके अंदर एक प्रेम का भाव पैदा करता है, इमोशंस, और फिर इसको फुलफिल करने के लिए आप देखिए कि वो उसे अपमानित करती है, लेकिन वो अपमानित नहीं होता, बल्कि वह इसे चैलेंज के रूप में लेता है, एक वार्निंग के रूप में लेता है, चेतावनी के रूप में लेता है, और फिर अपने आप को पहलवानी के लिए झोंक देता है ताकि मैं उससे बेहतर बनकर दिखाऊं, और वहां बनकर दिखाता है, क्योंकि अब उसने उस नायिका को, अपनी उस प्रेमिका को, आइफा को पाने के लिए कि जो इच्छा थी उसमें इमोशन को शामिल करके उसे जुनून में तब्दील कर दिया, और किसी भी हालत में उसे पाना है और वो पाता है। इसके बाद फिर आप दूसरी सिचुएशन देखिए, बीच में गैप आ जाता है दोनों में, एक तरह से मनमुटाव, क्या मतलब, उसकी पत्नी अस्वीकार कर देती है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, वो पुत्र के असामयिक निधन के कारण, वो घटना आपको मालूम है। इसके बाद वो अब जो कुछ भी कर रहा है, सामान्य तरीके से जिंदगी जी रहा है, और आप देख रहे हैं कि वो चंदा मांग मांग करके ब्लड बैंक बनाना चाह रहा है। अब उसका जो इमोशन है टूवर्ड्स हिज सन हो गया है, जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा, जिसके बारे में सुना है, जो केवल 18 घंटे तक इस धरती पर रहा। अब अपने उस अपराध बोध को मिटाने के लिए वो कहता है कि अब ब्लड बैंक तैयार किया जाए, क्योंकि ब्लड के अभाव में ही वो बच्चा नहीं रहा था। तो लोगों से पैसे मांग मांग करके इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। तो उसे फिर मौका मिलता है और फिर अब वो रेसलिंग सीखता है। उसकी उम्र हो चुकी है, उम्र हो चुकी है इस मायने में कि अब रेसलिंग की उम्र नहीं रह गई, इसके बावजूद वो सीखता है। अब वहां उसने अपने इस सीखने में, इस प्रतियोगिता को जीतने में, इस इच्छा को पूरा करने में कौन सा इमोशन शामिल कर दिया है? ब्लड बैंक, यानी कि एक बड़े स्तर पर, ठीक है मेरा बेटा चला गया ताकि दूसरों के बेटे इस वजह से न जाने पाए, नंबर एक। और नंबर दो कि मेरा वो जो प्रेम है वह वापस आ जाए, हो सकता है कि वापस आ जाए मेरी इन उपलब्धियों की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर से अपने उसने अपने इस मेहनत में, अपने इस काम में इमोशन को जोड़ दिया है। तो पहले जो इमोशन फर्स्ट स्टेज में इंडिविजुअल लेवल पर था, उसका अपना प्रेम, अब आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज में आते आते वो प्रेम फैल कर कितना विशाल बन गया है। अपने पुत्र और अपनी पत्नी के प्रति का उसका प्रेम अब फैल चुका है, बड़ा बन चुका है, सभी बच्चों के लिए हो चुका है, मानव मात्र के लिए हो चुका है। और जब प्रेम इस स्टेज पर पहुंचता है तो वही स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। तो मित्रों, इसका बड़ा खूबसूरत प्रसंग, या इसकी कह लीजिए बड़ी खूबसूरत यात्रा, एक फिजिकल एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होने की एक बड़ी खूबसूरत जर्नी आपको इस सुल्तान फिल्म में दिखाई देगी। तो मित्रों, मेरा कहना आप लोगों से इस एपिसोड के माध्यम से आज के केवल यह है कि आप सबकी अपनी अपनी इच्छा है जिंदगी में कुछ करने की। सवाल यह नहीं कि क्या करने की इच्छा है, सवाल है कि कुछ करने की इच्छा है, और बस उस अपने करने की इच्छा में इमोशंस को शामिल कीजिए। इमोशंस वो नहीं जो आपको कमजोर बनाए, इमोशन वो जो आपको ताकतवर बनाए, वो इमोशन कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, न्यूज में कुछ चीजें इशारे के तौर पर हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा। पहली खबर आपने सुनी कि हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोनों ने संयुक्त रूप से एक चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, जो भारत और बांग्लादेश का जो दूसरा पेट्रापोल चेक पोस्ट है। दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक इस तरह का प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेट्रापोल चेक पोस्ट है वो किन देशों की सीमाओं के बीच में है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप न्यूज सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये चीज दिमाग में आपकी ऑटोमेटिक तरीके से दर्ज होती चली जाएंगी, और जब भी आपको इनकी मदद मिलेगी दिमाग आपका उपलब्ध करा देगा, ये सामान्य तौर पर होता है। और दूसरी उसी के साथ जुड़ी हुई जो सूचना थी कह लीजिए, वो ये थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का जो लगभग 50% जो व्यापार होता है वो इसी चेक पोस्ट के थ्रू होता है। ये एक छोटी सी खबर है, लेकिन मित्रों ये खबरें ही हमारे लिए कभी कभी टॉपिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो इस रूप में कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और बहुत महत्वपूर्ण देश भी है। बांग्लादेश पर 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, मेंस में, तो कोई ताज्जुब नहीं कि आगे भी पूछा जाता रहे। अब बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हमारे लिए हैं, पड़ोसी देश होने के नाते भी और जो हमारे संबंध हैं उसके नाते भी। तो हो सकता है कि आगे बांग्लादेश के साथ कुछ और इस तरह के समझौते हों। जैसे आपको मालूम है कि पहले तो एक सीमा का समझौता साल भर पहले हुआ था जिसमें कुछ गांव की अदला बदली हुई थी, अब ये दूसरा है, डैम पर भी कुछ हुआ था। तो इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कहीं न कहीं एक नजदीकियां आ रही हैं। फिर आपने देखा कि अभी जो आतंकवादी गतिविधि बांग्लादेश में हुई है वो भारत के लिए बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि वो तो हमारा बिल्कुल ही बॉर्डर एरिया है। तो इस रूप में मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के जो आपसी संबंध हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज खासकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों को आधार बनाकर के एक एडिटोरियल आर्टिकल भी छापा है, वह मैं आप लोगों को उपलब्ध भी करा रहा हूं। मित्रों, जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो दूसरी जो खबर थी, हालांकि वो बहुत अपने आप में कंप्लीट खबर नहीं थी, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है कह लीजिए, केंद्र सरकार का, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मंत्री ने संसद में ये बताया है कि जो लाभ का पद है, लाभ का पद, बेनिफिट का जो पद होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, कानूनी परिभाषा नहीं है, यानी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि किसे लाभ का पद कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को ही ये देखना है, ये मतलब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है कह दीजिए, कि वो किसे लाभ का पद मानते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब हमारे चाहे संविधान में या नियम कानून में लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया है, ओपन छोड़ दिया गया है, है ना। अब आप देखिए कि इसका संदर्भ क्या है। आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार ने 21 संसदीय सचिव बनाए थे, इसको लेकर के मैंने बहुत विस्तार से बात भी आपसे की थी इसी डेली ऑडियो गाइडेंस में, और वो फिर एक विवाद चला कि ये सब लाभ के पद हैं और इनको एमएलए के पद से हटाया जाना चाहिए। फिर अपने जो राज्य सरकार है उसने एक विधेयक पारित किया कि ये पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, उसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, राष्ट्रपति जी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। इस बीच में मामला कोर्ट में पहुंच गया, अब वो कोर्ट इसके बारे में फैसला देगा। मेरी समझ से यहां थोड़ा समय करेक्ट करना चाहूंगा कि पता नहीं अब ये जो केंद्र सरकार ने जो ये स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने दिया है या संसद के सामने दिया है, ना इसको थोड़ा देख लीजिएगा। खैर, किसके सामने दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्र ने ऐसा कहा है कि अपरिभाषीय है, मतलब अपरिभाषित है, और राज्यों को इसके बारे में फैसला करना है। तो दोस्तों, ये जो संसदीय सचिव वाला मामला है ये पिछले लगभग एक महीने से काफी हॉट डिस्कशन में रहा है, और इस पर मैंने आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए थे, कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे, और मुझे लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना मुझे दिखाई देती है। तो इस पर भी आपकी थोड़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, तब सच पूछे तो ये जो टॉपिक है अपने आप में फिर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद डेफिनेटली फिर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, उसको केंद्र में रख करके जो भी निर्णय होगा उस समय फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सूचना जैसी ही है मित्रों, वो नई शिक्षा नीति को लेकर है। आप अगर अपने जनरल स्टडीज मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो शिक्षा नीति पर, शिक्षा पर मैं कहना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो उच्च शिक्षा पर हो, टेक्निकल एजुकेशन पर हो, प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर हो, कोई ना कोई एजुकेशन के हिस्से को लेकर के क्वेश्चन बनता ही है। अब चूंकि नई शिक्षा नीति बन रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे सरकार ने एक ड्राफ्ट जैसा तैयार किया था, लोगों से सजेशन भी मंगाने शुरू कर दिए थे, इस बीच में बहुत से लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए हैं, कमेटीज बनी हैं, सजेशंस के आधार पर, ड्राफ्ट मसौदे के आधार पर बहुत लोगों ने इस बीच में आर्टिकल्स लिखे, आर्टिकल्स के माध्यम से अपने सजेशंस दिए, मैं वे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड भी करता रहा हूं, और अब सरकार एक फाइनल ड्राफ्ट लेकर अब आएगी, और मुझे लगता है कि शायद उस पर भी थोड़ी बहुत राष्ट्रीय बहस हो, लेकिन कहना मुश्किल है। मित्रों, इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी जिसे बाद में लागू किया गया था, तो मतलब उसको आए हुए 30 साल तो हो गए न्यूज में जिसकी चर्चा की भी गई। अब बट नेचुरल है कि इस 30 साल में दुनिया की तस्वीर बहुत बदली है, सारी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही बट नेचुरल है कि हमारे शिक्षा के भी स्वरूप में परिवर्तन आए, और 30 साल के दौरान आप खुद उन सारी चीजों को देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की बहुत हाई डिमांड हो रही है, मैनेजमेंट की बहुत हाई डिमांड हो रही है, लोग प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स एक तरह से इग्नोर किए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक जो चेंजेस आए हैं स्वाभाविक है कि समाज के डिमांड के अनुसार वो परिवर्तन आ रहे हैं। तो मित्रों, इस को देखते हुए बहुत जरूरी है कि एक नई शिक्षा नीति लेकर आई जाए, तो इस बारे में मैं आपसे एक दो बातें खासकर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है मित्रों कि शिक्षा नीति पर जो भी लेख कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, और इस टॉपिक के लिए भी आप अपने पन्ने रिजर्व रख लें ताकि उसे आप अपडेट करते चले। दूसरा यह कि इस पर थोड़ा सा आप अपने आंखों को खोलकर निगाहें भी रखें कि इनफैक्ट रियल में सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से की जा रही हैं। आपने देखा कि एक दो दिन पहले या कल ही शायद मैंने आपको एक हायर एजुकेशन पर सुधार के की दृष्टि से एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने हायर एजुकेशन की बात कही थी। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक आपको लेकर चलना है ना। इसका संबंध ये मत समझिएगा कि आप चूंकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और ये एक बड़ी तैयारी है तो इसका संबंध केवल एक बड़े एजुकेशन से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों न्यूज से इतना ही है, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स एक मैं आपको जो दैनिक हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी जी का लिखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। खासकर इस आर्टिकल को आप हालांकि शीर्षक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सातवें वेतन आयोग के ऊपर लिखा गया होगा, लेकिन बेसिकली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की जो काम करने की जो प्रणाली है, उनको दी जाने वाली जो सैलरी है, उनका जो मोटिवेशन है, उनकी जो जड़ता है, उनकी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उन सब की भी चर्चा इसमें की गई है और एक अच्छा आर्टिकल है। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, ब्यूरोक्रेसी पर आप कह लीजिए, अगर सिविल सर्विस पर ना कहें तो, चाहे फिर उसकी समस्याओं पर हो, चाहे उस भ्रष्टाचार को लेकर के हो, और खासकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस आर्टिकल में कुछ और भी चीजें मिलेंगी कि जैसे रिक्रूटमेंट का सिस्टम क्या होना चाहिए, प्रमोशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या किया जाता है, तो इस तरह के कुछ नए आइडियाज आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आप उस दृष्टि से इस आर्टिकल को पढ़िएगा और मैं सच पूछे तो उसी उद्देश्य से आपको इसे प्रोवाइड भी कर रहा हूं। चीजें टुकड़े टुकड़ों में जरूर हैं लेकिन वो आपको एक आइडियाज देंगी सिचुएशन के बारे में, स्थितियों के बारे में या निष्कर्ष के बारे में। फ्रेंड्स एक एडिटोरियल कमेंट है इकोनॉमिक टाइम्स का, खासकर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है जिस पर हम लोगों ने बहुत बातें की हैं उसको लेकर के, और इसमें इन्होंने वेलकम किया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया था कि वह वेजिटेबल्स, सब्जियां जिसको आप कहेंगे, और फल, इन दोनों उत्पादों को इस एक्ट से बाहर कर देगी। तो इसमें अब उनको लग रहा होगा कि शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने इस निर्णय से बैकआउट कर रही है, वापस ले रही, तो उसने कहा है कि इसे वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं दोस्तों आपको मालूम है कि इस एक्ट के कारण किसानों का बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। इस एक्ट की जो सबसे बड़ा लक्षण है कह लीजिए, वो यही कि जो उत्पादक हैं, जो वेजिटेबल्स पैदा कर रहे हैं, जो अनाज पैदा कर रहे हैं, जो फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं, इस तरह के जो भी पैदावार उनकी हो रही है, उसे केवल वो मंडी में ही जाकर के बेच सकते हैं, और मंडी में केवल वही खरीदते हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो वो मोनोपोली के चलते, अपने आधिपत्य के चलते किसानों से बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो किसानों का भी शोषण होता है और कंज्यूमर से जब वो बहुत हाई रेट लेते हैं तो कंज्यूमर का भी शोषण हो रहा है, तो फायदा किसी का नहीं हो रहा है। इस एक्ट के खिलाफ बहुत लिखा गया, कमेटीज बैठी, उन्होंने कहा कि इस एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए, बहुत साफ साफ तौर पर कहा कि बेसिकली ये इस एक्ट के कारण क्या हो गया कि जो व्यापारी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी इनका बड़ा नेक्सस बन गया है और ये शोषण कर रहे हैं, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अब गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की स्थापना की है, और उसके वह एक ऐसा फोरम है जहां किसान अपने प्रोड्यूस को पूरे के पूरे कंट्री में कहीं भी बेच सकता है। दोस्तों इसके बारे में मैं ये केवल इतना ही कहूंगा कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने शायद कुरुक्षेत्र में या योजना पत्र कुरुक्षेत्र में शायद इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी किया है, और मैं खासकर फर्स्ट सेकेंड बैच के स्टूडेंट को बताना भी चाहूंगा कि उनको इस टॉपिक पर, सॉरी थर्ड फोर्थ बैच के स्टूडेंट को, कि इस टॉपिक पर मैंने उनको स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस के एग्जाम की दृष्टि से, तो इस पर मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। और मित्रों एक आर्टिकल है छोटा सा बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो खासकर कपड़ा क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर, ये आप जरूर पढ़िएगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में चर्चा करूं, क्योंकि जो कपड़ा क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों में से एक है। और चूंकि अभी भारत में जो सबसे बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था का, वो रोजगार का ही संकट है, तो उसमें ये जो कपड़ा उद्योग है हमारा कितना मददगार हो सकता है, उस लिहाज से आर्टिकल लिखा गया है। तो प्लीज आप इस आर्टिकल को भी जरूर पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लें। तो मित्रों न्यूज़पेपर से इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो दोस्तों मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है चत्र राम लहुआ का, जिन्होंने लिखा है कि वो डीएजी यानी कि डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को काफी बता रहे हैं और इसका उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसके लिए चत्र राम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एकेडमी की ओर से कि आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और मुझे मेल मिला है दोस्तों दक्ष प्रजापत का, जिन्होंने जलालुद्दीन रूमी जो 13वीं सदी में ईरान के एक महान सूफी संत हुए हैं, रूमी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी एक कविता कह लीजिए कविता ही है, उनकी एक रचना मेरे पास भेजी है। तो दक्ष आपके इस कोशिश के लिए भी आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं संदीप कुमार जो लखनऊ से हैं, शुभांगी नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, नितिन झा, सागर जायसवाल जो जयपुर से हैं, विनोद सकारिया जो जालौर राजस्थान से हैं, राजकुमार निठारवाल आप सीकर राजस्थान से हैं और सुखराम चौधरी आप जोधपुर राजस्थान से हैं, सुमित कुमार सीतामढ़ी बिहार से और कृष्ण मोहन तिवारी इलाहाबाद से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त किया जाता है। इस बीच में 2 दिन का आप लोगों के लिए विश्राम है एज फार एज डेली ऑडियो गाइडेंस इज कंसर्न। मैं आपके इन 2 दिनों के बहुत अच्छे तरीके से सुखमय तरीके से व्यतीत होने की कामना करता हूं और सोमवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।